नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज लगभग 95,000 करोड़ रुपए के 6 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने देश के जहाज निर्माण और समुद्री इकोसिस्टम को पुनर्जीवित करने के लिए 69,725 करोड़ रुपए के व्यापक पैकेज को मंजूरी दी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में मीडिया को ये जानकारी दी।
तो आज करीब 70,000 करोड़ रुपीज का पैकेज अप्रूव हुआ है और ये 10 ईयर्स का प्रोग्राम है बड़ा। शिप बिल्डिंग इज द मदर ऑफ हैवी इंजीनियरिंग। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री चालू होती है तो उसके बहुत सारे मल्टीप्लायर इम्पैक्ट होते हैं। इंजन मेकिंग चालू होता है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को उसका बेनिफिट मिलता है, स्किलिंग के लिए बहुत काम आते हैं।
श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,91,000 रेल कर्मचारियों को बोनस के रूप में 1,865 करोड़ रुपए से अधिक के भुगतान को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने देश में स्नातकोत्तर और स्नातक चिकित्सा शिक्षा क्षमता के व्यापक विस्तार को भी मंजूरी दी। केंद्र प्रायोजित योजना सीएसएस के तीसरे चरण में 5,000 पीजी सीटें और 5,023 एमबीबीएस सीटें बढ़ेंगी। श्री वैष्णव ने कहा कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बिहार में बख्तियारपुर राजगीर तिलैया रेल लाइन के दोहरीकरण को भी मंजूरी दी है।
रेलवे का बख्तियारपुर राजगीर तिलैया लाइन है, इसकी डबलिंग का फैसला लिया गया है। आप इस प्रोजेक्ट को अगर देखें, 4 बड़े जो हमारे सांस्कृतिक क्षेत्र हैं, राजगीर, नालंदा, पावापुरी, बोधगया जी मिला के ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक लाइन बनती है। ये लाइन अभी तक सिंगल लाइन थी, तो सिंगल लाइन के कारण इसकी लिमिटेड कैपेसिटी थी और डबल हो जाने से इसकी कैपेसिटी सब्सटेंशियली बढ़ जाएगी।
छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में आज 21 महिलाओं सहित 71 माओवादियों ने सुरक्षा बलों के सामने समर्पण कर दिया। पुलिस ने बताया कि इनमें से 30 माओवादियों पर कुल 64 लाख रुपए का इनाम था। माओवादियों ने जिले में चलाए जा रहे लोड वर्राटू यानी घर वापसी अभियान के प्रभाव में आत्मसमर्पण किया है। अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के अंतर्गत आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि के साथ साथ कौशल विकास प्रशिक्षण सहित अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के दौरान आज न्यूयॉर्क में विकासशील और अल्प विकसित देशों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। डॉक्टर जयशंकर ने एकजुटता और सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से विकासशील और अल्प विकसित देशों के बीच परामर्श को प्रमुखता देने के वास्ते मौजूदा मंचों का उपयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में सुधारों पर भी प्रस्ताव रखा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल उत्तर प्रदेश के वृंदावन जाएंगी। वे सफदरजंग रेलवे स्टेशन से एक विशेष ट्रेन द्वारा वहां जाएंगे। राष्ट्रपति श्री बांके बिहारी मंदिर, निधिवन और कुब्जा कृष्ण मंदिर में दर्शन तथा पूजा करेंगी। वे वृंदावन स्थित सुदामा कुटी भी जाएंगी और मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन और पूजा करेंगी। निर्वाचन आयोग ने आज जम्मू कश्मीर से राज्यसभा की 4 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की घोषणा की है। ये सभी सीटें फरवरी 2021 से रिक्त थीं। आयोग ने पंजाब से राज्यसभा की 1 सीट के लिए उपचुनाव की भी घोषणा की है। ये सीट इस वर्ष जुलाई में संजीव अरोड़ा के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। अधिसूचना 6 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदान और मतगणना 24 अक्टूबर को होगी। प्रसिद्ध कन्नड़ लेखक डॉक्टर एसएल भैरप्पा का आज दोपहर बेंगलुरु में निधन हो गया। उनका निधन एक निजी अस्पताल में हृदयाघात से हुआ। वे 94 वर्ष के थे। डॉक्टर भैरप्पा ने 25 से अधिक उपन्यास लिखे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर एसएल भैरप्पा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से अपील की है कि वे उन्हें विभिन्न अवसरों पर भेंट किए गए उपहारों और स्मृति चिन्हों की नीलामी में भाग लें। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि नीलामी से प्राप्त राशि गंगा नदी के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम पर खर्च की जाएगी। कोरिया बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज एचएस प्रणॉय का अभियान निराशाजनक रूप से समाप्त हुआ। वे चोट के कारण रिटायर्ड हर्ट हो गए। वहीं आयुष शेट्टी और किरण जॉर्ज को भी हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही प्रतियोगिता में भारत का अभियान समाप्त हो गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।